हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। अर्णव धृति के साथ कुछ हसीन पल बिताने के बाद कमरे से बाहर जाने को मुड़ा। अभी वो कुछ कदम आगे बढ़ा ही था कि किसी चलते फिरते आंधी तूफान जैसे कबीर कमरे का दरवाज़ा खोलकर धड़धड़ाते हुए कमरे में दाखिल हुआ और भड़का हुआ सा अर्णव पर चिल्लाने ही वाला था कि उसकी नज़र पीछे खड़ी धृति पर चली गई और एक ही पल में वो जंगली शेर से भीगी बिल्ली बन गया। भाभी, आप भी यही हैं? मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। सॉरी, लगता है मैंने आप दोनों के प्राइवेट मोमेंट को स्पॉइल कर दिया। मैं तो यहाँ अर्णव से कुछ ज़रूरी बातें करने आया था, बट इट्स ओके, मैं बाद में बात कर लूँगा, आप दोनों कैरी ऑन कीजिए। इतना कहकर वो जैसे आया था वैसे ही उल्टे पांव जाने के लिए मुड़ गया। तभी अर्णव की सख्त आवाज़ उसके कानों से टकराई। अकल के अंधे, कुछ भी बकवास करने से पहले अपनी बटन जैसी आँखों को खोल कर ठीक से देख भी लिया कर। कुछ नहीं हो रहा था यहाँ, इतने दूर खड़े हैं हम और मैं कमरे से बाहर ही आ रहा था, नज़र नहीं आया तुझे? कबीर ने खींचते हुए अपने जबड़े भींचे, इस ओर तो उसने ध्यान ही नहीं दिया था। अर्णव चुप हुआ। इसके साथ ही धृति की सौम्य सी आवाज़ वहाँ गूंज उठी। मैं काम से कमरे में आई थी, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं हो रहा था हमारे बीच। अब बात करने आए थे ना इनसे, तो आप आराम से बात कीजिए, मेरा काम हो गया तो मैं चली जाती हूँ। इतना कहकर धृति कमरे से बाहर निकल गई। अब वहाँ बस अर्णव और कबीर ही रह गए थे और इसके साथ ही अर्णव के चेहरे के भाव भी बिगड़ गए थे। इतने भी मैनर्स नहीं बचे अब तुझमें कि किसी के रूम में घुसने से पहले नॉक किया जाता है? वो तो हमारा लक अच्छा था कि हम ऐसा वैसा कुछ कर नहीं रहे थे, वरना तूने जैसी एंट्री मारी थी इरादे तो तेरे नेक बिल्कुल नहीं लग रहे थे। शादी की खबर सुनकर इतना भी बावला मत हो मेरे यार, क्योंकि अगर तेरे कारण मेरे स्पेशल मोमेंट स्पॉइल हुए तो छोड़ूंगा तो मैं तुझे भी नहीं। लो भाई, अर्णव जी को कबीर से ऐसे कमरे में धड़ल्ले से घुसना पसंद नहीं आया था, सो उसने धृति के जाते ही उसे अच्छे से झाड़ दिया और साथ ही धमकी भी दे डाली। उसकी बातें सुनकर कबीर खींच उठा। तेरे रूम में ऐसे बिना नॉक किए आने पर मैं खुद भी शर्मिंदा हूँ, पर तेरे और भाभी के साथ रहने पर पाबंदी लगी थी, बस इसलिए मैंने सोचा नहीं था कि दोनों साथ भी हो सकते हो, तो बिना नॉक किए अंदर चला आया। पर इसमें मुझसे ज़्यादा तेरी गलती है, इसीलिए मुझ पर चढ़ने की ज़रूरत नहीं है तुझे। एक तो सबके मना करने के बाद भी तू यहाँ भाभी के साथ अकेला था और ऊपर से तूने रूम भी लॉक नहीं किया था, तो मुझे खुली आंखों से कोई सपने तो आएंगे नहीं कि अर्णव महाराज यहाँ अपनी बीवी के संग दरवाज़ा खुले में रोमांस फरमा रहे होंगे, तो उन्हें ऐसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। जाने किस बात का गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन हावी था उस पर कि उसने उल्टा अर्णव पर ही चढ़ाई कर दी। लापरवाही उसी से हुई थी, इसलिए अर्णव पलटकर कुछ कह ना सका, बस तीखी निगाहों से उसे घूरने लगा, जिससे कबीर और ज्यादा खींच उठा। मुझे घूरना बंद कर और एक बात बता मुझे कि आखिर मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? किस बात की दुश्मनी निकाल रहा है तू मुझसे? मुझ पर इतने अत्याचार क्यों कर रहा है? दोस्त हूँ तेरा, कुछ तो रहम खाया कर मुझ पर, तू तो दुश्मनों से भी बदतर सलूक करता है मेरे साथ। माजरा कुछ और ही था, इतना अर्णव भी समझ गया और उसकी ये नौटंकी देखकर चिढ़ते हुए बोला, अब क्या कर दिया मैंने जो इतनी नौटंकी कर रहा है तू? शोक तो ऐसे मना रहा है जैसे मैंने तेरी गर्लफ्रेंड मार ली हो। मुझे अब ऑफिस से छुट्टी चाहिए और तू जबरदस्ती घसीटकर मुझे ऑफिस ले जाना चाहता है। तेरी तो दूसरी शादी है यार, पर मेरी तो पहली ही है। कुछ अरमान है मेरे भी, मुझे मधु के साथ मिलकर हमारी शादी की शॉपिंग करनी है। अब असली बात बाहर आई थी और इसके साथ ही अर्णव के चेहरे के भाव कुछ बदले थे। कबीर को इतना दुखी देखकर अर्णव ने आखिरकार उस पर तरस खा ही लिया। चल ठीक है, जा तू आराम से शादी की शॉपिंग कर अपनी मधु के साथ, मैं तेरे हनीमून में से छुट्टी काट दूंगा। जहां कबीर पहले उसे पिघलते देखकर खुश हुआ था, वहीं उसकी आखिरी की बात सुनकर चिढ़ उठा। अर्णव, तू ये बहुत गलत कर रहा है मेरे साथ। अपनी नाराजगी जताते हुए उसने अर्णव को घूरा, तो भला अर्णव क्यों पीछे रहता? उसने भी उसी के अंदाज में भौं से कोड़ते हुए जवाब दिया, बेटा एक महीने की हनीमून की छुट्टी तू ले रहा है, तेरे वजह से उस एक महीने में मैं धृति को लेकर कहीं नहीं जा सकूंगा, जबकि शादी हमारी भी तुम्हारे साथ ही होगी और कायदे से वो हमारा भी हनीमून पीरियड होगा, जब मुझे मेरी नई नवेली बीवी को छोड़कर ऑफिस जाना पड़ेगा, जबकि तू अपनी बीवी के संग अपना हनीमून एंजॉय करेगा, और गलत भी तेरे ही साथ हो रहा है। अर्णव ने तीखी निगाहों से उसे घूरा। कबीर तुरंत ही अपने पक्ष में दलील पेश करने लगा, तो जब तू दार्जिलिंग में भाभी के साथ था तब मैं यहाँ अकेले सब काम नहीं संभाल रहा था? बिल्कुल संभाल रहा था, तभी तो मैंने तेरी एक महीने की हनीमून की छुट्टी अप्रूव कर दी, अब इससे ज्यादा की उम्मीद मत करना तू मुझसे। बहुत बुरा है तू, भगवान ऐसा दोस्त दुश्मन को भी ना दे। पर तेरे जैसे दोस्त को जरूर दे, अर्णव ने दो टूक जवाब दिया, दोनों में से कोई किसी से कम नहीं था। कबीर ने उदास चेहरा बनाया और नाराजगी से उसे घूरने लगा। कुछ देर तो अर्णव भी बराबर उसे घूरता रहा, फिर झुंझलाते हुए बोला, चल अब यहाँ खड़े खड़े मुंह बनाना और मन ही मन मुझे कोसना बंद कर, जा जी ले अपनी जिंदगी, कर ले जाकर अपनी शादी की शॉपिंग अपनी मधु के साथ। सच्ची? कबीर के चेहरे पर खुशी और हैरानी के भाव उभरे, जबकि अर्णव मन ही मन खिलखिला उठा। हाँ, पर अगर एक मिनट और तू अपनी सड़ी सी शक्ल लेकर यहाँ रुका तो मुझे मेरा इरादा बदलते देर नहीं लगेगी। अर्णव के ये कहने की देर थी कि कबीर वहां से ऐसे गायब हुआ जैसे गधे के सर से सींग। अर्णव ने बेबसी से सर हिलाया और मन ही मन चिढ़ते हुए कमरे से बाहर निकल गया। दोपहर का वक्त हो रहा था। अर्णव लंच करने के बाद कुछ देर फोन हाथ में घुमाता रहा, फिर उसने धृति को कॉल लगा दिया। दूसरी तरफ धृति लेडीज पार्टी के साथ लंच के लिए होटल आई हुई थी। अर्णव का फोन देखकर वॉशरूम के बहाने से वहां से निकलकर कॉरिडोर के दूसरे तरफ बने लेडीज रेस्टरूम की ओर बढ़ गई। हेलो, धृति ने जैसे ही ये कहा दूसरे तरफ से अर्णव की नाराजगी भरी आवाज आई। इतनी देर क्यों लगा दी तुमने कॉल रिसीव करने में? सबके साथ थी ना, तो उनसे दूर आने में वक्त लग गया। अच्छा, कहाँ हूँ अभी? होटल आई हूँ लंच के लिए। पता है इतना चली आज मैं कि मेरे पैर दुखने लगे। अभी आधा ही दिन हुआ है और मैं इतनी थक गई हूँ कि मन कर रहे घर जाकर चादर तान कर सो जाऊँ और दो चार घंटे कोई डिस्टर्ब ना करे मुझे। अच्छा, इतना थक पर बस थकती ही रही या कुछ खरीदा भी? अर्णव के सवाल पर धृति ने बुरा सा मुंह बनाया और मायूसी भरे स्वर में जवाब दिया, अभी कहाँ कुछ लिया है, बस देखा ही है। फिर तो बेवजह तुमने खुद को आज थका लिया, अर्णव ने दुख जाहिर किया और जवाब में धृति ने मुंह लटकाते हुए हामी भर दी। और आप भी साथ नहीं है? पता है माधुरी और कबीर एक साथ हैं, दीदी और जीजू भी साथ में हैं, बस मैं ही अकेली हूँ। कुछ और मृणाल भी नहीं है साथ में जो मेरा टाइम पास हो जाए। क्यों, तुम्हारी फ्रेंड माधुरी तो है वहाँ तुम्हारे साथ, फिर भी इतना बोर हो रही हो? वो तो कबीर के साथ है ना, और मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, तो मैं मॉम के साथ हूँ, धृति ने अपनी विवशता बताई। वहीं दूसरे तरफ मौजूद अर्णव ने उसकी बात सुनकर संजीदगी से कहा, ओह मतलब तुम मिस कर रही हो मुझे? बहुत, पर अभी हमें अलग हुए कुछ ही घंटे हुए हैं और अभी से मुझे इतना मिस किया जा रहा है, क्या बात है? अर्णव मुस्कुराया। वहीं उसकी बात सुनकर धृति ने बुरा सा मुंह बना लिया। हाँ, खुश हो जाइए आप कि मैं आपको इतना मिस कर रही हूँ।
उसे यूं चिढ़ते देखकर अर्णव की मुस्कुराहट गहरी गई। खुश तो मैं बहुत हूँ, और एक राज की बात बताऊँ तुम्हें? अर्णव ने रहस्यमयी अंदाज में कहा और उसे यूं सस्पेंस बनाते देखकर धृति ने खींचते हुए मुंह बना लिया। कहिए, मैं भी बहुत मिस कर रहा हूँ तुम्हें। अर्णव के मोहब्बत भरे कोमल शब्द धृति के कानों से टकराए और उसके चेहरे पर खुशी व एक्साइटमेंट के मिले जुले भाव उभर आए। सच्ची? मुच्ची मेरी जान, तुम्हारे बिना बिल्कुल मन नहीं लग रहा। दिल कर रहा है कि सब छोड़ छाड़ कर तुम्हारे पास पहुंच जाऊं और तुम्हें अपनी बाहों में भरते हुए खुद में समा लूं। धृति, जो पहले उदास थी और फिर अर्णव की बात सुनकर मुस्कुराने लगी थी, वो खुद पर इतराने लगी। अब ज्यादा हो रहा है आपका, इतना भी फ्लर्ट करने की जरूरत नहीं आपको, और आप मुझे इतना मिस करने के बजाय अपना ध्यान काम पर लगाइए। फ्लर्ट नहीं रहा, सच कह रहा हूँ। कोशिश तो बहुत कर रहा हूँ पर मन लग ही नहीं रहा। मैं क्या करूँ, बहुत याद आ रही है तुम्हारी। अर्णव के शब्दों में सिर्फ और सिर्फ प्यार झलक रहा था। धृति ने अपनी खुशी छुपाते हुए उसके साथ जरा सख्ती दिखाई। बीते दिनों जो सारा सारा दिन आपने मेरा साथ बिताया है ना, सो आदत लग गई है अब आपको मेरे साथ की। सुधार लीजिए उसे, क्योंकि मैं आपको सीधे रात को ही मिलूंगी अब। पक्का रात को मिलोगी ना? अर्णव ने एक्साइटमेंट के साथ सवाल किया। उसकी उत्सुकता देखकर धृति मन ही मन हंस पड़ी और हल्की मुस्कान उसके लबों पर आ ठहरी। अच्छा सुनो ना। सुन तो रही हूँ, कहिए। अपने पास बुला लो ना, अभी आ जाऊंगा। अर्णव ने शब्दों में मोहब्बत की मिठास खोलते हुए अपनी ख्वाहिश बयां की। अगले ही पल धृति ने सख्ती से उसके सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। बिल्कुल नहीं, कोई जरूरत नहीं है यहाँ आने की, और खबरदार जो शाम से पहले ऑफिस से निकले। बहुत लापरवाह हो गए हैं अब। चुपचाप काम कीजिए अपना, मैं फोन रख रही हूँ अब, सब इंतजार कर रहे होंगे। बाद में बात करती हूँ आपसे। बड़ी निर्दयी हो तुम, कसम से। अर्णव ने छोट मोट नाराजगी दिखाते हुए बुरा सा मुंह बनाया। बदले में धृति ने भी उसी लहजे में तपाक से जवाब दे दिया, और आप दिल फेंक, चलिए अब फोन रखिए। मैं नहीं रख रहा। तो मैं काट रही हूँ, बाय बाय। धृति उसकी नाराजगी दिखाने का ये तरीका देखकर मुस्कुरा दी। इतना कहकर धृति ने कॉल कट कर दी और अर्णव की बेकरारी भरी बातें और उसका उतावलापन याद करते हुए फोन को अपने लबों से चूमते हुए अपने सीने से लगा लिया। ये सब नया था उसके लिए, अर्णव की प्यार भरी मीठी मीठी बातों और इन नई नई अनुभूतियों से उसका मन सराबोर था। ये अनूठे से खूबसूरत एहसास उसके दिल को रोमांचित कर रहे थे। सब कुछ बहुत हसीन और दिलकश था, एक खूबसूरत ख्वाब जैसा, जिसे वो सदा के लिए अपनी आंखों में बसाने को बेताब थी। दूसरी तरफ अर्णव, जो फोन पर नाराजगी जाहिर कर रहा था, अब भी धृति की खनकती आवाज उसके कानों में गूंज रही थी, जो उसके लबों पर बिखरी मुस्कान का सबब थी। जानता था वो कि ये सब अच्छा लग रहा है उसे, खुश है वो, और धृति के साथ अपने रिश्ते में आए इस बदलाव से वो भी खुश था। टू बी कंटिन्यूड।